نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے تھے مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر دیتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ محبتوں کا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اس کا نام الودود ہے۔ یہ آیت اپنی شان نزول کے اعتبار سے کب اتری کہاں اتری ہم اس وقت اس پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ایک آیت ایک خاص ماحول کے لیے ہوتی ہے اور ایک آیت کا دوسرا اینگل ہر دور کے ہر حالات کے انسان جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو اپنے لیے اس میں کیا ملتا ہے۔ اس میں سے جو لفظ مجھے آج بہت ہی زیادہ اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ ہے اللفا۔ آپ دیکھیے ایک ہی لفظ میں اللفا، پھر آپ دیکھیے اللفتا، پھر تیسری دفعہ اللفا۔ ایک آیت میں ایک لفظ تین دفعہ آیا جس کے اندر الف لام فا، اور اردو میں ہم اس کو الفت کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ فیؤلف تالیف ملانے کو کہتے ہیں۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے بننے میں یہ عمل استعمال کیا ہے کہ اس طرح سے ادھر ادھر سے چھوٹے چھوٹے بادل آتے ہیں، پھر وہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک بدلی بن کے برستے ہیں۔ تو یہاں ہم آج بات کریں گے کہ کسی بھی گھر کو جوڑنا، کسی گھر کی بنیادوں کو مضبوط کرنا، اس میں آخر کیا چیز ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ ہمارے گھر کیسے بن سکتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم جب کسی بھی نئے گھر کی بنیاد ڈالتے ہیں اکثر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم شاید اپنی کوششوں سے شادی کے بعد کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اگر ہماری کوششوں کا مقام 5% ہے تو 95% اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بڑا پیارا نقطہ کہہ دیا کہ وہ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ لو انفقت ما فی الارض، اور اگر تم دنیا بھر کی تمام چیزیں خرچ کر دیتے جمیعاً ساری کی ساری، لیکن ما الفت بین قلوبہم، پھر بھی تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ مجھے آج کے موقع پہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ ماں باپ سے کہہ رہے ہیں۔ آپ میں سے جو ماں باپ ہیں یا مائیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی ماں سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے بچے یا بچی کی شادی پہ کیا چاہتے ہو، تو میرا خیال ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا بھر کی ہر خوشی لا کر اپنے بچوں کے دامن میں بھرتے ہیں، اس میں جان سے مال سے جو نہیں بھی ہوتا اس کو بھی پا کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو خوش کریں۔ مجھے کسی کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک بات صرف کہنے کی اجازت دے دیتا کہ جو تم کہو میں وہ کر دوں گا تو بھلا لوگ کیا کہتے ہیں، سوال سمجھے؟ یعنی کہ کسی کو کہا جائے کہ آپ کی ایک دعا قبول کر لی جائے یا ایک کام تمہاری مرضی سے میں کر دیتا ہوں تو بھلا لوگ کیا دعا کرتے، تو اس میں کسی نے اس پہ کمنٹ دیا کہ ماں یہ کہتی کہ اللہ مجھے اپنے بچے یا بچی کا مقدر لکھنے کا اختیار دے دے۔ سچ ہے نا، اگر ہم میں سے کسی کو یہ چوائس دے دی جائے کہ ہم اپنے بچوں کے مقدر کا فیصلہ خود کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ایڑی چوٹی کا زور ہم لگاتے ہیں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے، پھر اس کے بعد اس رشتے کو نبھانے اور اس کو ویلکم کرنے میں کتنی محنت ہوتی ہے، پھر شادی، اور شادی کے بعد ساری زندگی ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچے بچی کا دل ملا رہے، سسرال میں اچھا تعلق بن جائے، سسرال اور میکے کے تعلق بہت اچھے ہوں۔ یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ شادی کی بونڈ میں لفظ الفت بہت اہم ہے، یہ محبتوں کا ہی تو سودا ہے۔ आप देखिए कि किसी ने आपको कोई चीज़ दी, आपको नहीं भी पसंद आई, आप कहते हैं कोई बात नहीं, इस्तेमाल की चीज़ें मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। कोई और चीज़ है आपको नहीं भी खाने में इतनी अच्छी लगी, आप कहते हैं खा लेती हूँ कोई बात नहीं, पेट तो भर जाएगा। लेकिन इंसान और इंसान, ये दो जिंदा चीज़ें हैं। एक बेजान चीज़ इंसान के साथ रह सकती है, लेकिन याद रखिए कि इंसान के इंसान के साथ रहने के बीच में अगर उल्फत और मोहब्बत की बॉन्ड ना हो तो एक रात साथ नहीं रह सकता। और ये अल्लाह ताला की शान है। सूरत रोम में अल्लाह ताला शोहर और बीवी के ताल्लुक के बीच में कहते हैं वमिन आयाति ही, ये अल्लाह की निशानी है, दिस इज साइन ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला, कान जाअल बैनकुम मवद्दा, उसने मोहब्बत डाल दी, मवद्दत व रहमा। इस पे बहुत दफ़ा दर्श हुए हमारे, होम स्वीट होम, मेरा घर मेरी जन्नत के नाम पे आप अगर चेक करें वेबसाइट पे आपको कई लेक्चर मिलेंगे। सेमिनार किया निकाह ए टू जी, इसी तरह जो है मैरिड लाइफ ए टू जी, दो हिस्सों में हमने किया। सब में थीम यही था कि शोहर और बीवी को जो चीज़ आपस में जोड़े रखती है वो मोहब्बत है। लेकिन सिर्फ मोहब्बत पे घर नहीं बनते, बन सकते हैं लेकिन निभते नहीं है, उसके लिए फिर रहमत भी चाहिए। शादी के शुरू दिनों में अगर लव है, मवद्दत है, और वो कहते हैं सेक्सुअल डिज़ायर को, अट्रैक्शन मेल एंड फीमेल के बीच में जो होती है, वक्त के साथ साथ ये कम हो सकती है, बीवी मसरूफ़ हो जाती है बच्चों के साथ, मर्द मसरूफियात में चले जाते हैं, या बाज़ दफ़ा मर्दों की डिमांड ज़्यादा होती है, औरतों में आहिस्ता आहिस्ता ये ख्वाहिश कम हो जाती है, तो ये नहीं कहा कि लव एट फर्स्ट साइट और फिर डिवोर्स एट सेकंड साइट, क्योंकि जी बीवी अब वो पतली नहीं रही, उसकी कमर मोटी हो गई, अब ये मेरे लाड नहीं देख सकती। कहा अगर आज उसमें तुम्हें उसके अंदर अट्रैक्शन कम फील हो रही है तो वह रहमा, अब उस पर रहमत करो। और आप देखते हैं कि जितना ज़्यादा जवानी में शौहर बीवी को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, बुढ़ापे में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर जवानी में कोई नहीं भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देता, वक्त तो गुजर ही जाता है। औरतें अमूमन शादी के बाद बच्चों में मसरूफ़ हो जाती हैं, मर्द कमाने में लग जाते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे सास माँ बाप। देखिए 70, 60, 50 के बेटे में जो कपल्स होते हैं उनकी ज़रा मोहब्बत देखा करें, साथ बैठें तो भी लड़ेंगे और पास नहीं होंगे तो याद करते रहेंगे, ऐसे ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साथ बैठते हैं तो बस समझें कि अब लड़ाई की तैयारी है, लेकिन घर से जाने नहीं देंगे, घर से चले जाएं तो सारा वक्त इधर उधर ढूंढेंगे, अभी आई नहीं, अभी आई नहीं। कभी एक दूसरे को दवाई दे रहा है, कोई दूसरे को पानी दे रहा है, कोई उसका हाथ पकड़ के उसको बाथरूम तक छोड़ रहा है, तो ये रहमत है। इस्लाम ने ये इस खूबसूरत तरीके से अपोजिट सेक्स के दिल में डाल दी कि अगर ये मोहब्बत ना हो तो आप देखिए कि दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग कभी एक छत के नीचे नहीं रह सकते। और आज तो अल्लाह माफ़ करे जो एक दौर चल पड़ा इंडिविजुअलिज्म का, हर तरफ यही है मैं मेरा मान, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको अगले ही दिन जाके वापस कर आते हैं। बस लोगों ने ये सोचा हुआ है कि चलो भी चीज़ ले लेते हैं, नापसंद आई तो वापस कर देंगे। कुछ कहते हैं 3 माह तक स्लिप मौजूद रहती है, उसके बाद वापस कर देंगे। कुछ लोगों को आप देखेंगे आज के दौर में तो उन्होंने शादी के साथ भी यही मामला किया, यानी जो चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा मेरे दिल में दर्द पैदा करती है वो क्या है कि आज बावजूद इसके कि हम मुसलमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको अपने सामने रखने वाले, बीवियों के साथ आपको कैसे रहना चाहिए और बीवियों को अच्छी तालीमात देने वाले, इसके बावजूद आज उम्मत मुस्लिमा में भी डाइवोर्स और ख़ानदानी झगड़ों की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि कोई शादी क्या होती है, डिस्प्ले होता है पूरा, हर चीज़ वहाँ जमा कर दी जाती है। शादी होने तक मामले ठीक रहते हैं लेकिन उसके अगले ही दूसरे चौथे महीने साल में आप सुन लेते हैं जी बात बिगड़ गई, क्या हुआ, कमी किस बात की थी। लड़की में भी कोई कमी नहीं दिखती, लड़के में भी नहीं दिखती, लेकिन वजह क्या बनती है कि घर बिगड़ते हैं, इसके बहुत सारे असबाब हैं, जिसमें अगर हम थोड़ा सा इस वक्त लव जुल्फत को देख लें तो तरतीब के साथ चंद चीज़ों को देख लेते हैं कि अगर किसी घर को जोड़ना है तो सबसे पहले शौहर और बीवी, जिनके अंदर ये एक ताल्लुक बराह रास्त जुड़ रहा है, फिर दो ख़ानदानों में जुड़ता है, इन सब के बीच में एक कॉमन ग्राउंड होनी चाहिए, और कॉमन ग्राउंड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना घर बना रहेगा। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि कोई 10 मंजिला घर बनाना चाहता है और नीचे ज़मीन क्या चूज़ करता है, जो रेतली है, क्या उसके ऊपर वो 10 मंजिलों का बोझ उठा लेगा। गदली ज़मीन है जिसको आप दलदल कह दें, घर नहीं बनेगा ना, पानी के ऊपर कोई 10 मंजिलें खींचना चाहे उसको नीचे सख्त मट्टी ढूंढनी होगी, पथरीली जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो जब नीचे बेस स्ट्रांग होगी ना, तो उसके ऊपर इमारत 10 नहीं इंशाल्लाह 50 साल भी इकट्ठे गुजारेंगे, और चाहे वो सिल्वर जुबली मनाएं या गोल्डन जुबली मनाएं, लेकिन वो कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुजरी है। वो मजबूत बॉन्ड क्या है कि जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लम ने बहुत खूबसूरत तरीके से ये बता दिया कि 4 बातों की वजह से एक औरत से निकाह किया जाता है। कभी उसकी खूबसूरती की वजह से, किसी की खूबसूरती देख के किसी मर्द से निकाह किया जा सकता है, इसी तरह दौलत की वजह से। बाज़ दफ़ा हसब नसब बड़ा अच्छा होता है, बड़े अच्छे ख़ानदान की है, हम जैसे अक्सर कहते हैं अपने घर की है, भाई की बेटी है, बहन की बेटी है, तो ये बॉन्ड्स हैं। लेकिन आपने फरमाया कि इन सब के ऊपर जो चीज़ है वो क्या है, दीन। अगर जोड़े के बीच में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के दीन की मोहब्बत के साथ आएगी, तो वो घर बड़ा पायदार होगा। कैसे? आप देखिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच तो आती है, साल में 4 मौसम है ना, तो आप देखिएगा कि आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी में तो एक दिन में आप 4 मौसम देखती हैं अपने शौहरों के, और शौहर भी हमारे देखते होंगे। कभी गुस्सा आ जाता है उन पर, कभी प्यार आता है, कभी हमखा हर बात के इल्ज़ाम उन पर। मौसम बदलते हैं ना, इन बदलते मौसमों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दीन जो है वो बंदे को सहारा देता है। और जब दोनों का अपना ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा होगा, अलवदूद की मोहब्बत के बगैर हम उससे मोहब्बत ले नहीं सकते। जिस शादी की बुनियाद में, जिसके चुनाव में, फिर जिस शादी के करने में, जिस शादी के निभाने में, एक एक मौके पे अल्लाह और उसकी मोहब्बत को सामने रखा जाएगा, आप देखेंगे कि वो बुनियाद इंशाल्लाह कहना चाहिए कि सुरैया तक पहुंचेगी। पहले दौर में आप देखिए सीधे सादे तरीके थे। हमें हमारी नानी की बात याद आती है कि वो अपने ताया के घर ब्याही गई थी, और आपको पता है कि उस दौर में लोग हवेलियों में रहते थे, बड़े बड़े घर थे। तो जब भी कभी हमने नानी अम्मा को छेड़ना कि अपनी शादी का सुना के, चलो मेरी क्या शादी हुई, नीचे से उठा के ऊपर ले गए थे, यानी इनका घर नीचे था, बड़े भाई ऊपर रहते थे। तो कहती थी तुम्हारा नाना जो था 1.5 जोड़ा लेकर आया था मेरे लिए, यानी एक सूट पूरा था और दूसरे की शायद दुपट्टा नहीं था या सलवार नहीं थी। लेकिन हमने देखा मेरे वाले 40-50 साल का साथ रह के दोनों अब दुनिया से चले गए ना, कोई लाड नहीं, कोई चाव नहीं, कुछ भी नहीं था। शादी के बाद भी इतनी झिझक और इतने हालात थे ना, वहाँ जाके कोई हनीमून के तसव्वुर थे ना, आई लव यू की कहानियाँ थी ना, कोई जाके दरख्तों पे झूमते हुए गाने गाते थे। लेकिन ज़िंदगियाँ कितनी खूबसूरत गुजरती थी, आप खुद अपने ऊपर लेके सोचिए। आज होता क्या है कि जब हम अपने इर्द गिर्द मीडिया और फिक्शन की वजह से एक बिल्कुल आर्टिफिशियल माहौल समझते हैं, जो बहुत बड़ी आदि एक गलती मुझे लगता है कि हम इंसानों को लगी, वो क्या है कि हम शादी को करने की बजाय मनाने लगते हैं। लाइक जैसे कह रही थी, पिक्चराइज करते हैं, फिल्मों का कोई डायलॉग, कोई गाना, कोई ऐसी चीज़ लेकर हम सोचते हैं शायद रियल लाइफ ऐसी होगी, लेकिन हकीकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। तो इसके अंदर एक मजबूत बुनियाद हो, इंशाल्लाह जितना अल्लाह ताला को खुश रखते हैं अल्लाह ताला हमें भी खुश रखता है। फिर आप देखिए कि इसके अंदर अगर आप अगली चीज़ पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करके देखें, तो जिस औरत का हासिल करना एक मर्द के लिए आसान हो, आपने फरमाया कि वो औरत अपने मर्द के लिए बहुत बाबरकत साबित होगी। यदि एक मर्द अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है कि अल्लाह के नबी निकाह की हाजत है, अच्छा बैठो। थोड़ी देर बाद देखा तो एक औरत आई और गरीब थी बेचारी, कोई उसका वाली वारस नहीं था। तो आपने कहा कि उस मर्द से कहा कि तुम इस औरत से निकाह करना पसंद करते हो? औरत से पूछा तुम इसे पसंद करती हो? थोड़ी देर में बाद उसने भी कहा मुझे मंजूर है, उसने कहा मुझे भी मंजूर है। आपने कहा अच्छा लाओ भाई, निकाह के लिए कोई हक महर में देने को कोई चीज़ है? जाओ देख के आओ। कुछ नहीं। कहा लोहे की एक अंगूठी मिलती है तो वही ले आओ। कहा अल्लाह के नबी वो भी नहीं है। कहा फिर मैं तुम्हारा निकाह कैसे करूँ, तुम्हारे पास तो हक महर भी नहीं है। कहा अच्छा नहीं, अल्लाह के नबी जाने लगा मायूस होके, पीछे से आपने पुकारा कहा माजमा का मिनल कुरान, तुम्हें कुरान कितना आता है? कहा फलां फलां सूरतें आती हैं। कहा अच्छा आती है, तो चलो बैठो तुम अपनी बीवी को ये सूरतें बाद में सिखा देना, यानी एक टीचर के नाते से कुछ भी कह ले उजरत होगी तो इस पर तेरा निकाह मैं उनके साथ करता हूँ, शादी हो गई। कहाँ आए और थोड़ी देर में शादी हो गई। इसी तरह एक लड़का था, जलबीब उसका नाम था, काला हबशी था, अल्लाह के नबी के पास आ गया। कहा अल्लाह के नबी निकाह की हाजत है? कहा अच्छा वो फलां घर है उधर चले जाओ, उनकी बेटी है उसको पैगाम डाल दो। कहा अच्छा वो चला गया, दरवाज़ा खटकाया, जी मैं इस तरह हूँ, मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है कि आपकी बेटी का रिश्ता मांगूँ। आप माँ बाप थे, आपको पता है कि माँ बाप जो है वो हमेशा ही सोचते हैं क्या देखें, काला हबशी, खानदान कुरैश नहीं है, अजनबी मुसाफिर कह लें, ना रंग ना दौलत पैसा कुछ भी नहीं, सोच में पड़ गए माँ बाप। कहा कि क्या करें, वापस करने लगे, पीछे से बच्ची ने जवाब दे दिया माँ बाप को कि आप देखिए कि इसको किसने भेजा मेरे पास, नबी सल्लम ने भेजा है। चले ये कुरैशी नहीं है, भेजने वाले तो कुरैशी हैं, अगर ये खूबसूरत नहीं है तो उनको भेजने वाले भी तो खूबसूरत है ना। और इस तरह उस औरत ने जब कहा कि मैं इनके साथ रह सकती हूँ, तो अल्लाह के नबी ने उनका निकाह करा दिया। आपको पता है कि क्या हुआ उस शादी के साथ, वो शख्स थोड़े दिनों में मदीना के अंदर मेहनत मजदूरी करके वहाँ के अमीर तरीन लोगों में शामिल हुआ और दोनों में इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि लोग आज की ज़ुबान में उनको क्यूपिड कपल कहते थे। यानी इतनी मोहब्बत थी, क्योंकि लो अनफक तमा फिल अर्द जमीअन मा अल्लफ तबैना क़ुलूबी। बाद दफ़ा आप देखते हैं बीवियों में कोई गुण नहीं होता, शोहर उनके पीछे पीछे फिरते हैं, और बाज इतनी हसीन के हाथ लगाओ तो मैली होती हैं, कौन देता है, रोती रहती हैं रातों को, मर्द घर ही नहीं आते, किसी की नज़रें कहीं लगी हुई हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो क्या पता चला कि हमें मोहब्बतें बांटने वाले से सब कुछ मिलना है। इसलिए जितना हम अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ेंगे उतना ही हमारा इंशाल्लाह ताल्लुक़ खूबसूरत होगा। अब एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूँगी कि शादी के बाद की ज़िंदगी में इंसान को क्या क्या चीज़ें फ़ायदा दे सकती हैं। सूरत अल बकरा में अल्लाह सुब्हान व तआला आयत 187 में फरमाते हैं, हुन लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम इनके लिए लिबास हो। आप देखिए कि शौहर को बीवी का और बीवी को शौहर का लिबास कहकर अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। अमूमन देखिए कि लिबास क्या होता है, खूबसूरती का जरिया होता है ना, तो बीवी शौहर के साथ खूबसूरत लगती है और शौहर बीवी के साथ खूबसूरत लगता है। लिबास जिस्म को ढांकता है, शौहर और बीवी एक दूसरे के ऐब ढांकते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए जिस्म में कोई ऐब हो सकता है तो लिबास हमारे उन ऐबों को छुपा देता है। तो शोहर और बीवी की जिम्मेदारियां जो हैं वो इससे दिखती हैं कि वो एक दूसरे के लिए ढकने वाले हों, बिला वजह एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए। आपके मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, किधर है वो, मैंने कहीं दूर रखे हुए हैं, अभी आपके पास क्या फटे पुराने कपड़ों में। इसलिए हुक्म भी यही है कि शादी के बाद शादीशुदा जोड़े को अलग नहीं रहना चाहिए। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि मर्द कमाने के लिए कई कई साल बाहर रहते हैं, बीवियाँ बाहर दूर हैं, बाज़ दफ़ा दोनों कमा रहे होते हैं, एक डॉक्टर है, एक उधर जॉब करती है, दूसरा उधर करता है, ये फितरत के ख़िलाफ़ है। और आप देखेंगे कि जितना शौहर बीवी करीब रहते हैं ना, उतने मोहब्बत बढ़ती है। इसमें मैं ये भी कहूँगी कि घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है, जो बच्ची को ब्याह के लेके जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक बच्ची माहौल छोड़ के आ रही है, माँ बाप भाई बहनों की मोहब्बत है, अब उसने वो सारी मोहब्बतें जो हैं वो आके उसी घर में ढूंढनी है। तो शौहर के साथ चूँकि कुर्ब का ताल्लुक़ होता है, तो शौहर बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ रहने का देना चाहिए। बस अब हर वक्त घर वाले सर पर सवार होते हैं, बाज वो तो हनीमून पर भी नंदों के बच्चे साथ पहुँच जाते हैं कि हम भी जा रहे हैं। तो इसमें जायज़ तरीके से अल्लाह ताला ने जो हदें रखी हैं उसको कायम रखने की ज़रूरत होती है। और इससे ये भी पता चलता है कि अपने शौहरों के नक्स नहीं निकालने चाहिए। अच्छी बीवियां कभी अपने शौहरों की बुराई नहीं करती, और शौहर वो बहुत ही बुरे होंगे, हदीस में आता है कि जो शौहर अपनी बीवी के पास जाए और बाद में अपने दोस्तों में बैठ के उसकी कोई बातें करे तो समझें कि उसने उसका पर्दा खोल दिया। तो इसमें एक खूबसूरत तरीके से आप देखेंगे कि इंसान दिखाएगा। फिर आप देखिए कि लिबास इंसान की पर्सनैलिटी को शो करता है, हम कैसा शोहर चूज़ करते हैं ये हमारा अंदर है। अगर एक लड़की है वो कहती है फलां हीरो से मुझे शादी करनी है, तो ये इसी बात का इजहार है कि उस लड़की के अंदर कुछ नहीं है। एक लड़की वो जैसे अभी मैंने जलबीब का वाक्या सुनाया, तो उस लड़की ने किस शोहर को चूज़ किया कि लड़की को दीनदार चाहिए था। तो बात का मतलब क्या चला कि जिस तरह लिबास हमारे ऊपर आता है तो हमारे रंग ढंग को खूबसूरत करता है, इसी तरह शोहर और बीवी एक दूसरे के लिए इज्जत और वक़ार का सबब भी बनते हैं। फिर आप देखिए कि लिबास इंसान की हैसियत के मुताबिक होता है, होना भी चाहिए। ये नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप उधार ले लेके पहन रहे हैं, और इसका अपोजिट भी नहीं है कि अल्लाह ने दिया हुआ है सब कुछ है लेकिन पहनते नहीं हैं। इसी तरह से आप देखिए कि लिबास मौसम की शिद्दत से महफूज रखता है। इस तवाजी ज़िंदगी में बाज दफ़ा बहुत बड़ी ऑटम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं, तो ऐसे वक्त में शौहर को बीवी का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि गलत साथ दे, जायज़ हद तक दे, अगर कोई मामला है माँ और बीवी के बीच में तो अच्छे तरीके से इस पर बात करनी चाहिए। फिर आप देखिए कि आरामदेह लिबास राहत और सुकून का सबब होता है। आप ये माने ना माने कि जो सुकून हमें नरम कपड़ों में मिलता है, जो लॉन के कपड़ों में, जो घर के कपड़ों में, वो हमें कभी भी कड़े हुए कपड़ों में नहीं मिलता। शादी के बाद देखिए, घर जाते हुए अमूमन चुभते हुए कपड़े और हाथ में पहने हुए सैंडल पकड़ के फिर रहे होते हैं और पाँव में छाले पड़ गए हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह शौहर बीवी के ताल्लुक में जितनी नेचुरलनेस हो, कभी भी इस रिश्ते में तसन्नो नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। मिसाल है, शादी से पहले दिखा दिया जी मेरी तो ब्लू आइज है। ऐसा हुआ एक, मुझे किसी ने किस्सा सुनाया कि शादी और चंद दिन बाद टूट गई। क्या हुआ कि वो लड़का कहता है कि जब लड़की देखने गए थे तो इसकी आंखें ब्लू थी और उसको कोई दिमाग में क्रेज था कि मैंने नीली आंख वाली लड़की से शादी करनी है। पता क्या चला कि वो उसने लेंजेस लगाए हुए थे। शादी के बाद जब वो वापस आए, घर में आए, तो कब तक पता ना चलता, पता चला वो लेंसेस थे, उसने तलाक दे दी। अब आप सोचिए कि आर्टिफिशियल जिंदगी है ना। तो शोहर बीवी के बीच में बहुत नेचुरल हो, ये फिल्मी हीरोइज्म जो है ये घरों में नहीं चलता ज्यादा दिन। और आप बैठी और एकदम आपके शोहर आके एकदम उछल के कूद के डाली को पकड़ लें, आप कहेंगे इनको क्या हो गया, कभी नेचुरल लाइफ में आपने देखा? और आप देखें हम में से कूद के एकदम यहाँ एकदम घूमना शुरू हो जाए और उधर चले उधर चले उधर चले, हमें कैसा लगेगा? लेकिन होता क्या है कि बाहर की चीज़ें हम स्क्रीन पे देख के उसको घरों में लगाने लगते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि लिबास पे अगर धब्बा लग जाए तो हर एक को दिखाने की वजह से फ़ौरन साफ़ किया जाता है। कभी हमें ये नहीं पसंद करेगा कि हाय देखो मेरे कपड़े गंदे हो गए। तो बिल्कुल इसी तरह इंसान होने के नाते इंसान के ऊपर धब्बे हो सकते हैं, तो एक दूसरे के धब्बों को छुपाना है इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से उसको मिटाने की कोशिश करनी है। फिर आप देखिए कि हर इंसान बेहतरीन लिबास पसंद करता है, तो इस तरह जब रिश्ते का मौका है तो जल्दी नहीं करनी चाहिए कि बस जल्दी कर दो जान छुड़ा लो, बल्कि बेहतर से बेहतरीन चीज़ मिले तो फ़ायदा होगा। फिर आप देखिए कि जब शादी हो जाती है तो उसके बाद शौहर और बीवी बन जाते हैं, एक हल्का सा गो थ्रू कर लेते हैं हम चंद मिनट में कि क्या हकूक और क्या फ़राइज हैं। आजकल तो वैसे हकूक की बात ज़्यादा की जाती है, विमेन राइट्स और फलां राइट्स, लेकिन इस्लाम का मिजाज समझ लीजिए कि ये लेने वाला है नहीं देने वाला है। मैं अपने हक मांगू नहीं बल्कि मैं अपने हक अदा करूं। आप देखेंगे जब शौहर भी यही सोचेंगे और बीवी भी यही सोचेंगी तो इंशाल्लाह ताला दोनों का इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और गाड़ी के दो पहियों की तरह गाड़ी चलती ही तब है जब दोनों तरफ से एक दूसरे के हक अदा करने वाले बने। पहले बीवियों के देख लें कि मर्दों के, विमेन्स फर्स्ट, औरतों के पहले देख लेते हैं। तो देखिए बीवियों के हकूक अल्लाह ताला सूरत निसा में फरमाते हैं आयत नंबर 19, वाशिरुहुन बिल मारूफ, और इनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो। देखिए ये इस्लाम कह रहा है, अल्लाह की ज़ात अल वदूद अर रहमान अर रहीम औरतों की कितनी ज़्यादा साइड लेते हैं। गालिबा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो जब रात को सोने का इरादा करते तो फिर अपने आप को साफ़ सुथरा करते, फिर खुशबू लगाते, फिर कहते जिस तरह मैं पसंद करता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए आराइश करे सजे सवरे, तो उसका भी तो यही दिल चाहता होगा। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि आ शुरू होना बिल मारूफ, और उन औरतों के तुम पर वैसे ही हक है जैसे तुम्हारे हैं। ये पता चलता है ना कि औरत पाँव की जूती नहीं है। नौस बिल्ला आप देखिए कि बाद जाहिल मर्द इस तरह की बातें करते हैं, तो औरतों को बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत हदें रखी हैं। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो सूरत निसा की इब्तदाई 5-6 जो उनकी तफसीर सुन लें, अगर कभी मौका नहीं मिला या अगर सुन चुके हैं तो आप जानते होंगे, खोल खोल के एक एक बात अल्लाह ताला ने बयान कर दी। तो मर्दों को बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए। तिर्मिज़ी की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लम ने हज्जतुलविदा के मौके पर फरमाया, लोगों सुनो औरतों के साथ अच्छे सलूक से पेश आओ क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे कैदियों की तरह कैसे हैं? तो मतलब जैसे कैदी भाग नहीं सकता, जो दे दो खाना पड़ता, तो अमूमन देखा जाए तो शादी के बाद औरत घर तोड़ना नहीं चाहती, बाउंड हो जाती है, ये मुराद है कि वो तुम्हें अब छोड़ के जा नहीं सकती। तुम्हें इनके साथ सख्ती का बर्ताव करने का कोई हक नहीं, सिवाय सूरत के जब इनकी तरफ से खुली हुई नाफरमानी सामने आए। ये चीज़ नहीं बर्दाश्त की जा सकती कि औरत में सरीहन कोई नाफरमानी हो और मर्द बिल्कुल खामोश बैठे रहें। अगर वो ऐसा कर बैठे तो फिर ख्वाब गाहों में इनसे रहता रहो, और इन्हें मारो तो ऐसा ना मारना कि कोई शदीद चोट आए। फिर जब वो तुम्हारे कहने पर चलने लगे तो इनको ख्वाम खास सताने के बहाने ना ढूंढो। देखो सुनो, तुम्हारे कुछ हकूक तुम्हारी बीवियों पर हैं और तुम्हारी बीवियों के कुछ हकूक तुम पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हुस्न मुआशरत का कितना खूबसूरत तरीका है। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ इतने जॉली थे। अगर आपको मौका मिले तो इंग्लिश की एक बुक है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट होम, इस नाम से आप उसको पढ़ के देखिए स्टेप बाय स्टेप, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से कैसे थे। कैन यू बिलीव कि अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ रेस भी लगाते थे? कभी आपकी बीवियां एक दूसरे से आटा उनके मुंह पे मलती तो अल्लाह के नबी साथ बैठ के स्माइल कर रहे होते थे। आप अपनी बीवियों के साथ काम करते थे। अब ये बात मैंने आपको बता दी तो आपने घर जाके मर्दों को यही बस बतानी है। क्या सुन के आए? ये सुन के आए कि वो साथ काम करते थे हा? लेकिन आप देखिए कि हल्का फुल्का, बस दफा दीनदार होने का मतलब बस नक चढ़ा हुआ, गुस्सा आया हुआ, दुखी दुखी रोता रोता, और जरा किसी को स्माइल देके कहते हाय इसका तो तकवा ही नहीं है। हालांकि अल्लाह के नबी इतने रोमांटिक थे, घर में आते पहले आते सबसे मिसवाक करते, सफर से आते तो मस्जिद में रुकते और किसी बच्चे के लिए पैगाम भेजते कि बीवियों को बता दिया जाए कि मैं आ गया हूँ। कहा वो साफ सुथरा कर ले अपने आप को ताकि जब तुम उनके पास आओ तो उनको बुरा ना लगे। घर से आते जाते तो गले लगाते बीवियों को, उनसे प्यार करते। ये खूबसूरत अलामत होती है। बाज़ दफ़ा दीनदार होने के नाम से बीवियाँ बहुत सख्त हो जाती हैं और इतनी कठोर कि मर्दों को उनमें कोई कशिश नहीं दिखती। देखिए इस्लाम इंसान के सारे सच्चे जज्बात को पूरा कराना चाहता है। अगर एक मर्द के अंदर खूबसूरत जज्बे हैं, उसका दिल चाहता है कि उससे प्यार करे और उसकी बीवी इतनी डेडिकेट है, इतनी समझदार है, तो उसको बाहर देखने की क्या ज़रूरत है? और अगर बीवी पहले ही नक चढ़ी और ऊपर से दीन पढ़ के वो और सख्त हो गई तो फिर वो दीन को बदनाम करेंगे। तो जायज़ हदों में रहते हुए अपने शौहरों के साथ बहुत अच्छा मामला करना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, खुशगुमानी। शौहर और बीवी एक दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखे। कैसा गुमान रखे? सूरत निसा 19 में आता है, फ़ैन करे तुम हन्नफासान तकरहु शय्य वयजअलुल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो, मगर अल्लाह ने इसी में बहुत कुछ भलाई रख दी हो। देखिए अब ये कितना खूबसूरत तरीका है सेकेंड ऑप्शन का। कभी हो सकता है कि आपको किसी दूसरे की कोई बात बुरी ना लगे, इज़ इट पॉसिबल? माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है 9 महीने, उसको भी बच्चे के अंदर 10 बातें नापसंद होती हैं, बल्कि जितने बड़े होते जाते हैं माओं को उनके अंदर ऐब और दिखते हैं। कभी नहीं हो सकता कि शौहर जो आपको मिल रहा है वो 100% आपकी मर्जी का हो और बीवी जो आपको मिली है वो बिल्कुल हर खराबी से नापाक हो। ये नहीं हो सकता, इसी में रहना पड़ेगा। एक पूरा सेमिनार हमने किया था इस पर और उसमें 21 वेज थे कुछ, उसमें हाउ टू बी अ सक्सेसफुल वाइफ, ये यूट्यूब पे है, सक्सेसफुल वाइफ था, तो उसमें 60 टिप्स दी थी, बहुत प्रैक्टिकल और उसका बहुत ज़्यादा हमें अच्छा फीडबैक भी आया, लोगों ने उस पर काफ़ी कमेंट भी दिए, तो अगर आप सुन सकें तो आपको शायद फ़ायदा हो। और उसमें इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि यकीन करें बाज़ दफ़ा हम अपने घर खुद बहुत जहन्नुम बना लेते हैं। आप देखिएगा मेरे नाम पर या नूरुल कुरान पर करके देखिए, तो बहरहाल ये यूट्यूब पे भी मौजूद है, नहीं है तो वेबसाइट पे, तो आपको इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी कि जिसमें हमने इस मौजू पे बहुत बात की भी है। फिर आप देखिए ज़िंदगी में कमियां रह जाती हैं, तो अगला मसला क्या है, अगला हक है कि कोताहियों को नज़रअंदाज कीजिए। सूरह तगाबुन आयत 14 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल्लकुम फ़ाहज़रूहुम व इन ताबू व तस्बहू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा ग़फ़ूरुर रहीम। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद में से बास तुम्हारे दुश्मन हैं। अब इसको सुनकर एकदम इंसान गुस्से में आ जाता है, अच्छा जी दुश्मन है तो आप देखिए सब नहीं कुछ। अब आप पूछ रहे होंगे ये कौन है, तो वो जो अल्लाह के हुक्म तोड़ने पे माइल करें, वो बीवियां जो शौहरों को मजबूर करती हैं कि हराम कमाओ, गुना के कामों में साथ दो, खुद फजूल खर्चियाँ करती हैं और शौहरों को मजबूर करती हैं, और इसी तरह के वो मर्द जो अपनी बीवियों को बेपर्दगी पे और बेदीनी पे माइल करते हैं, और वो बच्चे, तो वो दुश्मन है। करो क्या, 3 लफ्ज़ हैं, अगर आप यहाँ गौर थोड़ा सा आयत पे करके देखिएगा, फ़हज़रूहुम, हज़रा, ताफ़ु, अफ़वा और तस्फ़हु, वस्फ़ सफ़हा, 3 लफ्ज़ हैं, और आगे देखिए तग़फ़िरू, 4 लफ्ज़। डिक्शनरी के 4 लफ्ज़ इस एक आयत में आ गए जो माफ़ करने से मुतल्लिक़ हैं, कि बीवियों को और बच्चों के मामले में तुम्हारा मामला मतलब जाने दो, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा फिर क्या। तो इससे ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे गुस्से में आ रहे हैं। अब मिसाल है कि अब इस वक्त हम औरतें ही हैं ना, तो अगर मर्दों की बातें आगे आएंगी, लेकिन अगर आपके मर्द हैं, मिसाल है आपको कहते हैं मैं 5 बजे आ जाऊँगा, नहीं आए, 5:30 बज गए, जाने दीजिए फिर क्या। ज़िंदगी में फ्लेक्सिबल रहें, आप जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगी उतना फ़ायदा उठाएंगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि मर्दों को अपनी बीवियों पर सख्ती नहीं करनी चाहिए। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है, इसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी और अगर इसे छोड़ कर रहोगे तो टेढ़ी ही रहेगी, बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। अब आप फिर परेशान हो गए, आपके चेहरों से लग रहा है हमें टेढ़ा क्यों का। तो आप देखिए, टेढ़ी चीज़ में तो हुसन है, नाजुक डाली झुकी हुई होती है तभी तो खूबसूरत है। कर्व्स के नाम पे तो हम परेशान हैं, कमर तो हम कमरे तो अपनी नापते रहते हैं, तो औरत के तो साथ ही एक डेलिकेसी और एक नज़ाकत का मानी आता है, तो अल्लाह के नबी ने इसमें कोई गलत नहीं कहा। फिर इसी तरह देखिए कि मर्द को अपनी बीवी के जज्बात और उसके मशागिल यानी उसकी हैबिट और उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना चाहिए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के नबी के यहाँ गुड़ियों के साथ खेला करती थी और मेरी सहेलियाँ भी मेरे साथ खेला करती थी। आप में से कितनी औरतें हैं जो शादी के बाद भी खेलती हैं या खेली, और कोई खेल रही हो और मियाँ साहब को लगी हो भूख तो गुड़ियों का हाल क्या होगा। लेकिन आप देखिए कि खेलती थी, जब अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाते तो सब इधर उधर छुप जाती और आप ढूंढ ढूंढ कर एक एक को मेरे पास भेजते ताकि मेरे साथ खेले। तो अपनी बीवी के ऊपर मर्द को हर वक्त चौधरी साहब नहीं बने रहना चाहिए। अब ये बातें आपके मज़े की नहीं है, ये तो शोहरों की है ना, लेकिन यह कि कम अज़ कम मुझे पता है कि ये बातें आपको याद रहेंगी, ये सारी आपने घर जाके आज सुनानी है। फिर इसके बाद आखिरी जब सुनेंगी तो वो मुझे पता आपने नहीं सुनानी, फिर आपने कहना छोड़ें अब हम तो इतनी सुनने पर तैयार नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसका भी आपके सामने जिक्र ज़रूर करूँगी। अगली चीज़ जो शोहर को अपनी बीवी के साथ करनी चाहिए, फ्राख दिली के साथ रफीका हयात पर खर्च करें। स्टिंची नहीं होना चाहिए मर्द को, बखील मर्द, कंजूस मर्द बिल्कुल किसी को अच्छे नहीं लगते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक दिनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जो तुमने किसी गुलाम को आज़ाद कराने में सर्व किया, एक दिनार वो है जो तुमने किसी फ़कीर को सदके में दिया, और एक दिनार वो है जो तुमने अपने घर वालों पर सर्व किया। इनमें सबसे ज़्यादा अजर व सवाब इस दिनार के खर्च करने के जो तुमने अपने घर वालों पर सर्व किया। तो मर्दों को भेजा करें ग्रोसरी लेने। या मैं आपको साइड पॉइंट भी बताती जा रही हूँ कि हम औरतों ने मर्दों को बहुत ही रिलैक्स कर दिया, जो ही हमने गाड़ी चलानी शुरू की ग्रोसरी भी हमारे सर पे पड़ गई, बिल तक हम बिजली के जमा कराते हैं, बाज़ दफ़ा तो देखा गया गाड़ियाँ तक औरतें ठीक कराने जाती हैं। ये आपका हक नहीं है, ये मर्दों को देने दीजिए, वो घर में लेके आते हैं तो उनको इसका अजर जो है वो ज़्यादा मिलेगा। फिर मर्द का एक और जिम्मेदारी क्या है कि बीवी की तालीम और तरबियत का अहतमाम करे। सूरह तहरीम आयत 6 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। आज आप देखिए बीवियाँ ज़रा पढ़ने पढ़ाने शुरू हो जाएं तो मर्द बाद सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं। बाज़ जगह तो ये तक देखा गया कि वक्त पे खाना नहीं पका तो बीवियों पे गुस्सा करते हैं, हालांकि मर्द का जिम्मा है कि बीवी की तालीम का अहतमाम करे। तो हमारे कल्चर में तो ये बात बहुत ही मायूब है, इसका बहरहाल जिक्र करना ज़रूरी है। फिर इसी तरह आप देखिए कि हज़रत इस्माइल को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सूरह तौहा आयत 132 में, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी इस पर कायम रहो। यहाँ से पता चलता है कि शोहरों की जिम्मेदारी है कि बीवी और बच्चों को नमाज का हुक्म दें, और अगर आज के बाद आपके शोहर आपको नमाज के ऊपर कहें तो खुश हों। आपने फरमाया वह जोड़ा बड़ा खुशकिस्मत है कि बीवी शोहर को उठाती है रात को नमाज पढ़ने के लिए और शोहर बीवी को उठाता है, और अगर वो ना उठे तो उस पर पानी के छींटे मारता है। अब आप बताएं, जरा आप सो रही हैं और आपके मियाँ साहब आप पे पानी का छींटा मारें, वो रही सही लड़ाई रात को शुरू हो गई। दिन में अच्छे ताल्लुकात होते हैं तभी तो रात को बंदा इस तरह की बात बर्दाश्त करता है। तो बहरहाल लिए दिए नहीं रहना चाहिए। हदीस अबू दाऊद में है कि जब कोई मर्द रात में अपनी बीवी को जगाता है और वो दोनों मिलकर दो रकत नमाज पढ़ते हैं तो शोहर का नाम जिक्र करने वालों में यानी जाकिर और बीवी का नाम जिक्र करने वालियों यानी जाकिरा में लिख लिया जाता है। अब देखिए ये वही बात है ना कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक अच्छा होता है ना तो मियाँ बीवी की बड़ी प्यारी मोहब्बत होती है, मस्नूई बुनियादों पर कभी भी खुशियाँ नहीं बनती। फिर आप देखिए कि अगली चीज़, हज़रत उमर जब रात के लिए वक्त इबादत के लिए उठते तो अपने घर वालों को भी जगाते और कहते उठो नमाज पढ़ो, असल खुशियाँ यहाँ से मिलेंगी। फिर इसी तरह मर्द को अपनी बीवी के साथ घर के कामों में मदद करना चाहिए। हज़रत असवद से रिवायत है कि हज़रत आयशा से अर्ज़ किया कि रसूल अकरम घर में क्या करते थे, हज़रत आयशा ने फरमाया आप घर के काम काज में मसरूफ़ रहते और जब नमाज का वक्त होता तो नमाज के लिए उठ खड़े होते। ये नहीं कि नमाज मर्द की कज़ा हो जाए और आप कहें कि आप सारा खाना आप ही पकाएं, ऐसा नहीं था। थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि अब हमें अपने शोहरों के लिए क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ इताअत, बस इस पर ही मूड ख़राब हो जाता है, बात मानना। سورت نسائے 34 میں آتا ہے فالصالحات قانتات، اور نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں. اس پہ تو میں بہت بات کرتی ہوں، میرے اوپر ایک الزام ہے، الزام سچا ہی ہوگا تبھی بار بار لگتا ہے کہ میں شوہروں کی بہت سائڈ لیتی ہوں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں شکر ہے خود بھی عورت ہوں، لیکن یقین کریں میں اس بات پہ پورے دل سے کہنے کو تیار ہوں، میں بھی ایک عورت ہوں، آپ بھی عورتیں ہیں. یہ جتنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اگر آپ اپنی انگلیوں پہ گنتی رہنا، یعنی پہلی چیز آپ یہاں سے جو لے کے اٹھیں، بات ماننی ہے، اکڑ نہیں چاہیے، اطاعت مانو. میاں جو کہتے ہیں جو جائز بات ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو مانو. یہ سارا کو کر کے پھر اس پہ اوور آل ان شاء اللہ ہم چند منٹ بات کر لیں گے. دوسری چیز اس میں دیکھیے، یہ جو اطاعت والی بات ہے، اس میں خاص اطاعت کا بھی تذکرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے آدمی جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی، اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے، اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے. اب دیکھیں یہ مشکات کی روایت ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر کی نافرمانی میں ایک تو خاص نافرمانی ہے نا، کہ بدتمیزی کرنا، آگے سے بولنا، زبان درازی کرنا، لیکن شوہر اپنے خاص حق کے لیے بلائے اور بیوی نخرے کرے، یہ بھی چیز مرد کی حق تلفی ہے. کبھی آپ سوچا کریں کہ شادی سے پہلے مرد کے پاس کیا نہیں تھا. کھانا ماں اچھا پکا کے کھلا دیتی ہے، کپڑے بہنیں دھو دیتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مرد کے پاس ایک خاص چیز کی ضرورت تھی نا، جو اس کے جسمانی تقاضے کو پورا کرنے کی تھی. آج دور ہوا کیا کہ عورت بھی مرد بن گئی، مرد والی ساری ذمہ داریاں عورتوں نے اپنے پر خود لے لی، شانہ بشانہ کام کرنے میں ان سے بھی آگے نکل گئیں. اب ایک عورت بھی صبح جب 7 بجے کی اٹھ کے کام پہ نکلی ہوئی ہے، مرد بھی نکلا ہوا ہے. مرد تو ہو سکتا ہے 5 بجے آ کے تھوڑا ریلیکس ہو جائے، ٹی وی دیکھ لے، کچھ کام کرے، بیوی نے گھر آ کے کھانا پکانا، صفائی کرنی، بچوں کو ہوم ورک کرانا، پھر اگلے دن کی تیاری کرنا، 11, 12, 1 بجے تک، پھر صبح 7 بجے جانا ہے. اب وہ عورت جو سارے دن کی تھکی ہاری ہے، ہو سکتا ہے وہ شوہر کی ضرورت پوری نہ کرے، تو پھر غصہ کس پہ آئے گا؟ وہ پھر کس پہ آئے گا کہ بیوی بات نہیں مانتی؟ لیکن اگر آپ فطرت پہ رہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی ذمہ داریاں دے دی، مرد باہر کی نبھائے، مرد گھر سے نکلا، بیوی اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کرتی ہے، اس کے کپڑے رکھے ہوئے، خوبصورت طریقے سے ناشتہ بنا کے دیا، ساتھ لنچ باکس دیا، جاتے وقت اسمائل کر کے پیار سے اس کو رخصت کیا، پہنچ گئے تو پوچھا خیر سے پہنچ گئے، جن میں ایک دو بار بات کی. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس مرد کو واپس آنے میں کتنی اٹریکشن ہوگی، کتنی اچھی میری بیوی پیچھے ہے. پھر بیا گھر آتے ہیں، گھر صاف ستھرا، کھانا خوشبودار، فریش کھانا پک رہا ہے، بیوی صاف ستھری پہنی اوڑھی، ساتھ مل کے کھاتے ہیں، بعد میں آرام کرتے ہیں. یہ ہے ہوم سویٹ ہوم. اس کو اسلام نے خوبصورت گھرانہ کہا ہے. لیکن جتنا ہم عورتیں میٹیریلسٹک لائف میں جاتی ہیں، پھر ہم وہ کر نہیں پاتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی شوہروں کا حق مارا جاتا ہے. جب شوہروں کا حق مرتا ہے تو بعض دفعہ پھر ان کی نظریں غلط طرف جاتی ہیں. تو بہرحال مرد کی اس طرح کی جائز بات میں عورت کو نافرمانی نہیں کرنی. پھر اس کے بعد اپنی عزت کی حفاظت کرے عورت، عصمت اور آبرو کی حفاظت. سورت نسائے 34 میں آتا ہے حافظات للغیب، یعنی شوہر کے سامنے جس طرح پاک صاف رہتی ہیں، اس طرح ان کے بعد بھی. یہ نہیں کہ دل میں کوئی اور سج رہا ہے، خیالوں میں کوئی اور ہے. بعض دفعہ شادی سے پہلے کے کوئی تعلقات ہوتے ہیں، اور یقین کریں کہ ہم جو دین کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے پاس پوری جہاں سے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹس ہوتی ہیں باتیں. حیرت ہوتی ہے یقین کریں بعض دفعہ کہ آج کے حالات جو ہیں وہ ماضی سے بہت بدل گئے. پہلے شادی سے پہلے کے افیئر زیادہ ہوتے تھے، ان میرڈ لڑکی، اس سے نظر، اس سے دوستی، اس سے بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ. آج کے دور میں شادی شدہ جوڑوں میں زیادہ خرابیاں آ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا کہ نظریں پاک نہیں ہیں. جب شادی ہو گئی، اب در سے پچھلا ماضی کا دفتر بند. اور نصیحت کروں گی، اگر زندگی میں کبھی کسی سے کوئی تعلق تھا بھی، مت شادی کے دن، شادی کی رات لاڈ میں شوہر کو سب سنا دیا. ایسا ایک واقعہ ہوا کہ شادی ہوتی ہے، پھر میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، پھر وہ مرد بھی اپنے افیئر سناتے ہیں ذرا کہ ہم نے ان کو چھیڑا، ان کو چھیڑا. آج کی لڑکیاں کہتی ہیں ہم کہاں کم تھے، وہ بھی اپنے دو چار افیئر سنا چکی. کچھ مہینے سال گزرے، میاں کو کسی بات پہ غصہ آیا، انہوں نے انہی باتوں کا تانا بیوی کو دیا کہ تم تو مجھے خود سنا چکے، اور گھر بھیج دیا. تو کبھی بیوی اپنی پچھلی زندگی کی کوئی بات شوہر سے نہ کرے. اور اس پہ تو بہت بات ہم کرتے ہیں جب سورت نساء پڑھتے ہیں، کیونکہ آج کل منگنیوں کے طور پہ اتنا لمبا عرصہ گزرتا ہے، اس میں تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور کئی منگنیاں بیچ میں ٹوٹ جاتی ہیں، شادی کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ اتنا زیادہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو بہرحال عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے. ابن حبان کی روایت ہے کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کتنا آسان ہے، ہمیں تو کوئی بہت زیادہ تلواریں اٹھانے کی اور تیر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہم اپنی نیچرل لائف پہ رہیں. फिर एक और चीज़ जो औरत के ऊपर लाजिम बनती है वो क्या है कि इजाज़त के बाहर घर से बाहर ना जाए। देखिए कि मर्द कफ़ील है ना, शादी की सूरत में मर्द ने बहुत खर्च किया। आज बस दफ़ा यंग बच्चियों को ये बातें सुन के गुस्सा आता है, लो जी क्या बात है, वो बग़ैर पूछे जाएँ तो मैं बग़ैर पूछे ना जाऊँ। तो पहले हदीस सुन लीजिए, आपने फरमाया कि अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरत के लिए ये जायज़ नहीं कि वह अपने शौहर के घर में किसी ऐसे शख्स को आने की इजाज़त दे जिसका आना शौहर को नापसंद हो और वो घर से ऐसी सूरत में निकले जबकि इसका निकलना शौहर को नागवार हो और औरत शौहर के मामले में किसी दूसरे का कहना ना माने। तरगीब और तरहीब की रिवायत है। तो आप देखिए कि इस्लाम का मिजाज क्या है, शादी का पूरा खर्च मर्द उठाता है, घर बनाना, सजाना, संवारना, उसको वहाँ रखना, अकेले उसके घर के अखराजात करने, ये सरासर इस्लामी शादी होती है। हमारा कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारे यहाँ लड़की की शादी पे लोग मदद करते हैं गरीबों की कि फलां की बेटी की शादी है, हालांकि इस्लाम शादी का कोई बोझ लड़की या उसके घर वालों पर नहीं डालता। हम रस्मों के नाम पे इतना शादी को बाद मुश्किल कर लेते हैं कि वल्लाही हम सेलिब्रेशंस में इतना खो जाते हैं कि असल खुशियां ख़त्म होती हैं। वो दिन जिसका इतने महीनों से इंतज़ार होता है वो सिर्फ टेंशन में गुजर जाता है। बाद में याद आता है जूता भी नहीं पहनना मैचिंग का, वो ज्वेलरी तो उधर ही पड़ी रही क्योंकि गम था। वो ना नाराज़ हो, वो ना परेशान, उधर जाना है, वो अभी पार्लर पर जाना है, अभी उधर जाना है, इतना सेलिब्रेशन में खो गए कि हमने सच्ची खुशियाँ खो दी। और नुकसान क्या हुआ कि हमारी आपस की ज़िंदगी खुशगवार न रही। फिर इसी तरह आप देखिए कि अगली चीज़ क्या है कि अपने कौल और अमल से शौहर को खुश रखें। आपने फरमाया जिस औरत ने भी इस हालत में इंतकाल किया कि इसका शौहर इससे राज़ी और खुश था तो वो जन्नत में दाखिल होगी। अच्छा, अब आप ये सुनते हो कुछ जहन में क्वेश्चन रख सकते हैं, अच्छा शौहर को खुश करे वो कहते हैं कि नमाज ना पढ़ो, सवाल है ना हमारे जहनों में कि शौहर कहते हैं जी पर्दा ना करो, प्लकिंग ना। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत होती है जब औरतें कहती हैं वो जी हम अपने शौहर की खुशी के लिए प्लकिंग करते हैं, तो मैं कहती हूँ ये कौन सा शौहर है जो आपको इतनी करीब से देखता है। सच बताइए कि शौहरों को पता होता है हमारे चेहरे पर कितने बाल हैं, ऐसा नहीं होता। तो जितनी बातें शौहर की मानने और ना मानने पर, उस पर एक असूल याद रख ले, सब बातें क्लियर होंगी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला ताअत ली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो उसमें मखलूक की किसी की नहीं माननी। शौहर तो बहुत बात की बात है, माँ बाप की नहीं माननी, ठीक है, तो अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। हाँ, किस शौहर की हर बात माननी है जो अल्लाह को भी खुश रखे। जो शौहर अल्लाह को खुश रखता है आप उसको भी खुश रखेंगे, तो जो शौहर अल्लाह को खुश रखता है वो आपसे कभी भी गलत किस्म का मुतालबा नहीं करेगा। फिर इसी तरह आप देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, जब कोई आदमी अपनी बीवी को ख़ास ज़रूरत के लिए बुलाए और वो ना आए, मुराद है जिस्मानी ताल्लुक़ की तरफ, इस बिना पर शौहर रात भर इससे खफा रहे तो ऐसी औरत पर सुबह तक फरिश्ते लानत करते रहते हैं। अब इसको भी समझ लीजिए, आप कहते हैं अच्छा जी औरत तो बीमार थी अब क्या करें, और औरत तो थकी हुई थी, तो मैं फिर वही बात कहूँगी कि ये सारी हदीसें आइडियल माहौल में होती हैं। और खुदा न खास्ता अगर शौहर किसी गलत मुतालबे के लिए बुलाता है, पीरियड्स में बुला ले या गलत फेल के लिए सेक्सुअली औरत को बुलाना चाहे, तो फिर नहीं बात मानी जाएगी। ये सारी इताअत जो है ये कौन सी होगी जिसमें अल्लाह की रहमत कोई टूटे ना। फिर इसके बाद अच्छी बीवी कौन होती है, जो शौहर का दिल जीतने की कोशिश करती है। आज क्या कहते हैं वो हमें खुश रखें, फिल्म में तो हमने देखा था कि वो हीरोइन के पीछे फिर रहा था हीरो, और हम किसी हीरोइन से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने बीवी के अंदर एक इतनी कशिश रखी है, आपको पता है कि बीवी वो काम करवा सकती है जो बाज़ दफ़ा तीर और तलवार से नहीं होता।